Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धतारिणे ओम शांति 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 शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम नमः शिवाय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम हराय नमो नमो हराय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय मृडाय नमः
ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದಿಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷದ್ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ಗೆ ಅಂತರ್ಗತ ಚತುರ್ಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ 18ವೇ ಮಂತ್ರ ಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಯದಾ ತಮಸ್ತನ್ನ ದಿವಾನರಾತ್ರಿರ್ ನ ಸನ್ನ ಚ ಸಚಿವ ಏವ ಕೇವಲ ತದಕ್ಷರಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಸೃತಾ ಪುರಾಣಿ ನೈನ ಮೂರ್ಧಂ ನ ತೀರ್ಯಂ ಚ ನ ಮಧ್ಯೇ ಪರಿಜಗ್ರಭತ್ ನ ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಸ್ತಿ ಯಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ಯಶಃ ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನೈನಂ ಹೃದಾ ಹೃದಿ ಸ್ತಂ ಮನಸಾಯ ಏನಂ ಏವಂ ವಿದು ಅಮೃತಾಸ್ತೆ ಭವಂತಿ ಅಜಾತ ಇತ್ಯೇವಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ವೀರುಃ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ರುದ್ರಯತ್ತೇ ದಕ್ಷಿಣಂ ಮುಖಂ ತೇನ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಮಾನಸ್ತೋಕೇತನಯೇ ಮಾನ ಆಯುಖಿ ಮಾನೋ ಗೋಕು ಮಾನೋ ಅಶ್ವೇಖುರೀರಿಕಃ வீரான்மானோருத்ரபாமிதோ பதிர்ஹவிஷ்மந்தஹ சதமித்வா ஹவாமஹே இஸ் மந்திர மே மானஸ்தோகி தனயே மான ஆயுகி முர்தன்யுஷா கோ வேத மே க உச்சாரண கர்த்தே ஹேன் இஸ்லிய ஹம்னே மானோ ஆயுகி கஹா ஹோகா ஆப் லோக் இஸ்கா இஸ்கோ காட் கூட் கே க நஹி பனானா ச சஹி ரஹனே தேனா யே முர்தன்யுஷா கோ வேத மே க உச்சாரண கர்த்தே ஹேன் ஆயுஷி சப்த ஹே லேகின் வேத மே க உச்சாரண கர்த்தே ஹேன் தோ பிரசங்க சல் ரஹா ஹே ब्रह्म विद्या का तत्पद लक्ष्यार्थ तत्पद का शोधन चल रहा है। शोधित तत्पद कैसा है? जहां तक तत्पद की बात आती है तो वहां दो अर्थ देखना पड़ता है, एक तटस्थ लक्षण को और दूसरा स्वरूप लक्षण को। वाच्यार्थ तटस्थ लक्षण को बोध कराता है और लक्ष्यार्थ शोधित तत्पद को, जो लक्ष्यार्थ को बोध कराता है। यहां इस मंत्र के द्वारा उस परमात्मा के उस स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है जो उसका स्वरूप लक्षण है, शोधित तत्पाद पद का लक्ष्यार्थ है। श्रुति कह रहे हैं कि यदा तमस्तन्न दिवान रात्रि, यदा माने जिस समय, अतमा ये संधि ऐसा कर लेना, यदा अतम, तम का अर्थ होता है अविद्या, अतम का अर्थ होता है जिस समय अविद्या नहीं रहती है। इसका मतलब हुआ कि जिस समय मूल अज्ञान नहीं रहता है। आप लोगों को महात्माओं ने कई बार समझाया है कि अज्ञान के दो अवस्था है, एक मूल अविद्या जिसको कारणाविद्या भी कहते हैं और दूसरा तूलाविद्या जिसको कार्याविद्या कहते हैं। इसी को वेदांत के भाषा से आप समझना चाहो तो मूल अविद्या का अर्थ होता है आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या, वो केवल आवरण कर सकती है, अपने आश्रय रूप अधिष्ठान को आवृत्त कर सकती है, उसी को मूलाविद्या कहते हैं, उसी को कारणाविद्या कहते हैं और उसी को आवरण शक्ति से युक्त अविद्या कहते हैं। और उसी अविद्या का दूसरा स्वरूप है तुलाविद्या। तुलाविद्या का अर्थ होता है कार्याविद्या, और आप इस कार्याविद्या को विक्षेप शक्ति वाला कह सकते हैं। यहां यदा अतम करके श्रुति ने कहा जिस समय तम नहीं रहता। सामान्यतया लोक प्रसिद्ध रूढ़ अर्थ तम का है अंधकार। तम शब्द का रूढ़ अर्थ क्या है? अंधकार। और इस अंधकार का लाक्षणिक अर्थ है अविद्या। अविद्या का यौगिक अर्थ है जो स्वयं तो कुछ नहीं है परंतु अन्य के अस्तित्व को लेकर अपने शक्तिमान होने की क्षमता जो रखता है उसको अविद्या कहते हैं। न विद्यते स्वयमेव इति अविद्या, ये यौगिक अर्थ हो गया। आप लोगों को किसी भी पद के अर्थ निकालने के लिए इन सब प्रक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। एक तो वाच्यार्थ यानी रूढ़ अर्थ जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है, पहले तो उसको लेना। कोई भी पद, कोई भी वाक्य आपको मिलेगा उसका सामान्य अर्थ रूढ़ अर्थ, रूढ़ माने लोक में प्रसिद्ध जो अर्थ है। जैसे तमह, ये पद आपको मिला, शून्य को मिला तम, ये तम इस पद का लोक प्रसिद्ध रूढ़ अर्थ क्या है? अंधकार। लेकिन यह श्रुति जिसके लिए ये तमप पद प्रयोग कर रही है ये लोक प्रसिद्ध अंधकार के लिए नहीं है। यदा तमः, जिस समय तमा नहीं रहता है, तब यहां तमप पद का अर्थ लोक प्रसिद्ध रूढ़ नहीं है। फिर यहां क्या है? लाक्षणिक अर्थ है। लक्षणावृत्ति के द्वारा यहां तम पद का अर्थ लेना चाहिए अविद्या। तमा माने अविद्या। हम संकेत कर चुके हैं अविद्या के दो भेद हैं, मूला अविद्या और तूला अविद्या। यूं तो आचार्य लोग अविद्या के एक तीसरा भेद भी मानते हैं, आप समझ लेना, उसको लेसा अविद्या कहते हैं। लेकिन यह श्रुति लेसा विद्या की तरफ संकेत नहीं कर रही है, क्योंकि लेसा विद्या का यहां कोई प्रयोजन नहीं है। लेसा विद्या की आवश्यकता और लेसा विद्या का प्रयोजन वहां रहता है जहां किसी जीवन मुक्त पुरुष के प्रारब्ध के बारे में जब चर्चा करनी पड़ती है, जब चर्चा करना होता है, जिसको तत्व अपरोक्ष हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है, और जिसके साक्षात्कार के चलते मूला विद्या और तूला विद्या दोनों नष्ट हो गए हैं, फिर भी वह जिंदा है, फिर भी वह उपदेश आदि समस्त लोक व्यवहार कर्म कर रहा है। किसके आधार से कर रहा है वो? तो जहां जीवन मुक्त पुरुषों की उनके प्रारब्ध की चर्चा आती है, तो उस प्रारब्ध को टिकाने वाले तत्व के रूप में लेसा विद्या को लिया जाता है। अन्यथा वेदांत हर जगह लेसा विद्या को महत्व नहीं देते, क्योंकि उस लेसा विद्या, लेसा अविद्या, लेसा विद्या नहीं समझना, लेस प्लस अविद्या, लेसा अविद्या, यानी लेस अज्ञान, क्योंकि वह उसके द्वारा किसी को कोई नुकसान न होने के कारण वेदांत दर्शन उस लेस अविद्या के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि उससे किसी को भी नुकसान नहीं है, ना आपको नुकसान है ना ज्ञानी को नुकसान है। जबकि ज्ञानी को उस लेस अविद्या के चलते फायदा ही है, लाभ ही है, इसलिए जिसके द्वारा जो नुकसान न हो उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदांत इस दो प्रकार की जो अविद्या है उसी से आपको भी समस्या है, उसी से हमको भी समस्या है। आपको और हमको कहने का अभिप्राय आप अन्यथा नहीं लेना। ज्ञानी को भी उसी दो अविद्याओं के चलते है, अज्ञानी को भी उसी दो विद्या के चलते समस्या है, इसलिए वो दो प्रकार की जो अविद्या है वो नष्ट होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखकर ये श्रुति, ये मंत्र यहां प्रयोग किया गया है। तो हम बता रहे थे अतमा शब्द का लाक्षणिक अर्थ हो गया अविद्या। अविद्या दो प्रकार के हैं, अतमा दो प्रकार का है, एक मूला अविद्या, दूसरे तूला अविद्या। मूल अविद्या को ही कारण अविद्या कहते हैं वेदांत में, क्योंकि वही सबका कारण है, और तूला अविद्या को कार्य अविद्या कहते हैं, और क्योंकि तूला अविद्या ही एक अनेक रूप में प्रतीत होती है। मूला विद्या एक रूपा है तो तूला विद्या अनेक रूपा है, किसी को दूसरी भाषा में आपको और स्पष्ट समझा दें, मूला विद्या का नाम है आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या, जिसमें केवल आवरण करने की यानी आवृत करने की शक्ति क्षमता है। तूला विद्या का मतलब होता है विक्षेप शक्ति से युक्त अविद्या, यानी जिसमें अनेक होने की, अनेक प्रतीत कराने की क्षमता है। हमेशा आप विक्षेप शक्ति का अर्थ यही समझ लेना, जो एक है, जो जैसा है, उसके ठीक विपरीत दिखाने की क्षमता जिसमें है उसको विक्षेप शक्ति बोलते हैं। आवरण शक्ति का अर्थ आप यूं कर लेना कि जो वस्तु जहां जिस रूप में है वो वस्तु वहां उस रूप में देखने यानी प्रतीत होने न देने की क्षमता जिसमें है। क्योंकि हमारी दो समस्याएं हैं हमारे जीवन में। पहली समस्या यह है कि जो वस्तु जैसा है जहां है वहां वो वस्तु वैसा प्रतीत हो नहीं पाता है, ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या क्या है हमारी, जो वस्तु जहां जैसा है वैसा प्रतीत हो न पाना, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि उसके विपरीत निश्चय करा देना, ठीक उससे भिन्न वस्तु के रूप में आपको निश्चय करा देना, यह सबसे बड़ी समस्या है। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है विक्षेप शक्ति की है। हालांकि विक्षेप शक्ति तभी काम कर सकती है जब आवरण शक्ति काम किया हुआ होता है तब। हालांकि आवरण शक्ति काम करती रहती है तो कोई ज्यादा समस्या नहीं रहता है, वो विक्षेप शक्ति जब काम करने लग जाती है तब जाकर हमको परेशानी होती है। आपको उदाहरण दें, सुषुप्ति अवस्था में केवल आवरण शक्ति काम करती है तो कोई हमको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। आप जब गहरे निद्रा में सोते हो, सुषुप्ति अवस्था में जब आप जाते हो, उस समय में केवल आवरण शक्ति काम करती होती है। वो आवरण शक्ति क्या करती है कि आपके जो कुटस्थ स्वरूप है, अविकारी स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, अकर्ता अभोक्ता स्वरूप है, उसको वह अपरोक्ष होना नहीं देती है, उसको ढके रखती है। इसलिए आप सुषुप्ति अवस्था में मैं ही कुटस्थ हूं चिदानंद रूप शिवो हम नहीं कह पाते हो, क्योंकि आपका जो असली स्वरूप है कुटस्थ, आपका जो असली स्वरूप है शिव, आपका जो असली स्वरूप है ब्रह्म परमात्मा, जिस जो भी कहो आप, उस स्वरूप को वह ढके रहता है। तो इसलिए आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं है, और उसके ढके रहने पर भी आप कहते हैं कि मैं बड़े आनंद से सोया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, सुखम अहम अस्वाभसम। अब जागने के बाद आपकी ऐसी प्रतिविज्ञा होती है, स्मृति होती है, प्रतिविज्ञा होती है, तो वो कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। समस्या कब है, जब उसके विपरीत विक्षेप शक्ति काम करती है। तो विक्षेप शक्ति क्या काम करती है, अकर्ता को कर्ता के रूप में आपको प्रस्तुत कर देती है, अभोक्ता को भोक्ता के रूप में प्रस्तुत कर देती है। यही तो कारण है जब तक आप गहरी निद्रा में सोते रहोगे तो कभी न नौकर को, न पत्नी को, न किसी को चाय बना के दे दे कहोगे, कहोगे कोई मुझे चाय पीने की इच्छा है चाय बना के दे दे कहोगे कोई? और बड़े आश्चर्य की बात है, उस आवरण शक्ति से आप जब जगते हो और जिस समय विक्षेप शक्ति काम करती है, तुरंत विक्षेप शक्ति के काम करते ही तुम जागते ही आप नौकर होगा तो नौकर को, पत्नी होगी तो पत्नी, किसी को भी, अरे एक कप चाय बना दे भाई, अफट से बोल पड़ोगे, एक कप चाय ला जल्दी से। आप पहले सुषुप्ति में अभोक्ता बने थे और जागते होते ही भोक्ता बन गए। सुषुप्ति में आवरण शक्ति काम कर रही थी और जागते ही किसने काम किया, विक्षेप शक्ति ने काम किया। आवरण शक्ति जब तक काम कर रही थी आप अपने स्वरूप को तो नहीं जानते थे, लेकिन भोक्ता तो नहीं बने थे ना, अपने स्वरूप को न जानते हुए भी आप भोक्ता तो बने नहीं थे, इसलिए चाय की समस्या नहीं थी। अब आप जैसे जागते हो तब फिर आपको चाय की समस्या बन जाती है कि अरे चाय लाओ, तो आप भोक्ता बन गए, चाय के भोक्ता बन गए आप। इतना ही नहीं, जागते ही तुरंत आप नौकरों को कहेंगे कि अरे भाई पेपर आया नहीं, पेपर कहां है, पेपर दो, आप पेपर के भोक्ता बन गए। पेपर हो गया विषय, आप हो गए विषयी, पेपर हो गया भोज्य और आप हो गए भोक्ता, उस पेपर का उपभोग करता आप हो गए भोक्ता। किसने ये सब काम किया? और उठते ही आपको सबसे पहले टॉयलेट जाना पड़ा, उठते ही आपको ब्रश करना पड़ा, आप उठते ही आपको यूरिन जाना पड़ा, आप कुल्ला करना पड़ा, दातुन करना पड़ा, या आप क्या हो गए कर्ता? सुसुप्त अवस्था में थे तो आपको टॉयलेट जाने की समस्या नहीं थी, अपने स्वरूप को तो नहीं जानते थे, साथ में कर्ता भी नहीं बने थे। ना आपको उस समय टॉयलेट जाने की समस्या थी, ना ब्रश करने की समस्या थी, ना यूरिन जाने की समस्या थी, ना नहाने की समस्या थी, ना धोने की समस्या थी, ना पूजा के मंदिर में जाने की समस्या थी, ना जप करने की समस्या थी, ना विष्णु सहस्रनाम पाठ करने की समस्या थी, ना गीता पढ़ने की समस्या थी, ना प्रेमपुरी जाने की समस्या थी, क्योंकि आप कर्ता बने ही नहीं थे। कब? सुषुप्ति अवस्था में आप कर्ता नहीं बने थे। अब क्या सुषुप्ति अवस्था में आप कर्ता नहीं बने थे और सुषुप्ति अवस्था में भोक्ता नहीं बने थे, तब क्या आप अपने स्वरूप में अवस्थित थे? यही विडंबना है कि अपने स्वरूप में भी आप अवस्थित नहीं थे। अकर्ता अभोक्ता बनने के साथ साथ में आपको उस समय अपने स्वरूप का भी अपरोक्ष हो गया होता, तब तो आपका सब काम बन गया था, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में अपने स्वरूप का अपरोक्ष नहीं हो पाया था। किसके चलते? तो आवरण शक्ति के चलते, यानी अविद्या के जो प्रथम स्वरूप है आवरण शक्ति अर्थात कारण रूपा अविद्या, जिसके चलते आपका स्वरूप ढका हुआ था, तब तक तो कोई समस्या नहीं। देखो, अज्ञानी होकर बैठना ये बहुत अच्छी बात है। व्यवहार में संसार में अज्ञानी, जितने आप अज्ञानी होकर बैठोगे उतने ही आपको आनंद आएगा। हाँ, समस्या कब आती है? अज्ञानी होता हुआ ज्ञानी होने के जो आप नाटक करते हो तब आपको समस्या आती है। अज्ञानी होते हुए ज्ञानी होने का जब आप नाटक करते हो, अभिनय करते हो, ज्ञानी होने का भाव जब आ जाता है तो आपको समस्या होती है। ज्ञानी का अर्थ कौन सा ज्ञानी? ज्ञानी का अर्थ अपने स्वरूप का ज्ञानी की बात नहीं कह रहे हैं, ज्ञानी का मतलब पद पदार्थों के ज्ञान का। जब आप कहते हैं कि ये पद है, ये पदार्थ है, मैं जानता हूं, घट ये पद है, तो बोले घट इस पद का अर्थ जानते हो? बोले हां। मिट्टी का एक बर्तन विषय से कंबुग्रियमान, हां देख लो। जब आप पद पदार्थ के जानने का अभिनय करते हो तब वह ज्ञान आपको समस्या के रूप में खड़ा, क्योंकि वह ज्ञान ज्ञान न होकर अज्ञान ही है। क्योंकि आप कोई जागृत अवस्था में जितने भी घाट पट आदि सबको, ये प्रेमपुरी आश्रम ये ज्ञान है कि नहीं, आत्मानंद जी कथा कर रहे हैं ये ज्ञान है कि नहीं, आत्मानंद के द्वारा निकले हुए वो शब्द आप जानते हो सुनते हो ये ज्ञान है कि नहीं, आत्मानंद लाल कपड़े पहने हुए हैं ये ज्ञान है कि नहीं, सिर मुड़ाए हुए हैं ये ज्ञान है कि नहीं, ये ज्ञान वास्तव में आपकी समस्या का समाधान करने वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने के कारण, समस्या का समाधान न कर पाने के कारण इस ज्ञान को वेदांतियों ने, शास्त्र ने अज्ञान कोटि में ही रखा है, इसलिए इसी ज्ञान के द्वारा आपको समस्या होती है बस। क्योंकि यह है तो अज्ञान, लेकिन आप इसी को ज्ञान मानते हो, है स्वरूप तो ये अज्ञान, इसलिए आपको समस्या है। इसी को कहते हैं विक्षेप शक्ति।